अपने जीवन की अच्छाई बुराई का विवेक वो कर सकता है, करेगा, लेकिन जब हमारी आत्म जागृता की जागृति होगी तब। आत्म जागृति के लिए भी हमें सावध रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। उस पथ पर आगे चलने की हमारी जिज्ञासा, हमारी इच्छा होगी, तब जाकर के हम वहां तक पहुंच पाएंगे। जो संबंध है उस एक दूसरे के साथ जुटने का, हंस ने भी कहा एक निरक्षीर विवेक, दूध में पानी उसको अलग करने की शक्ति उसके पास है। जब पानी और दूध मिल जाता है तो पानी की कीमत दूध के बराबर हो जाती, हो ही जाएगी। चाहे ऐसे देखो तो पानी से दूध कीमती है, लेकिन दूध में पानी मिल जाने के बाद उसकी भी कीमत मित्रता के नाते वही हो जाएगी। जल पै सर सभी का देखो प्रीति प्रीति जल। पानी भी दूध के भाव से बिकेगा क्योंकि संग अच्छा मिल गया है। अब देखा कि पानी है तो ऐसा पानी वाला दूध तो हम पीते ही नहीं, हम उपयोग ही नहीं करते। हमारे संदरी के देख महाराज तो पानी वाला दूध आया। तो जब ऐसे मिश्रित कोई भी चीज हो, मिलावट की हुई चीज, वो अच्छी नहीं लगती है। तो मन और विषय जब अंदर एक दूसरे में घुल मिल गए हैं तो जीवन कैसे अच्छा लगेगा। उसके प्रति लगाव भी है फिर भी अच्छा भी नहीं है। जैसे किसी भी चीज में मिलावट की है तो हम उसके दाम देने में थोड़े हिचकाएंगे। अरे इसके दाम इतने दे सकते, मिलावट है कैसे दे सकते। कहीं शुद्ध मिल जाए थोड़े दाम ज्यादा देने पड़ेगा, कीमत देंगे, अच्छी देंगे, लेकिन चीज शुद्ध मिलनी चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी अलग करके जितना देना हो इतना शुद्ध दे दो, और जितना शुद्ध होगा इतना ही हमारे उनके प्रति भाव सद्भाव लगाव अच्छा रहेगा। मन भी जितना भी विषयों से अलग रहेगा तब तक हमको बड़ा आनंद आएगा। हाँ, थोड़े समय के लिए वासनाओं और भोगों के लिए मन उसमें चिपकेगा, लगेगा। उस समय उस क्षणों में उस भोगों का आनंद वो ले सकता है, लेकिन जब समाप्ति हो गई, इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद वही मानसिकता वही आ जाएगी पल कि उसमें से वो आनंद नहीं मिलता है जो बीच में मिला, फिर उसके तरफ से लगाव छूट गया। जब मन भी इस प्रकार सोचता है, ग्लानी भी होती है कि क्या कर रहा है, मैंने क्या किया, अधिक खा लिया तो परिणाम ये आया, मैं व्यसनी बन गया, अधिक व्यसन किया, ज्यादा प्रमाण से ज्यादा ले लिया, तो उसमें भी दुखी हो गया, सोचता है कि मैंने क्या किया। मन अलग तभी होता है खाने से, व्यसन से, विषयों से, वासनाओं से। एक बार उसको उसी क्षण के लिए जो क्षणिक तृप्ति आ जाएगी, लेकिन उसी समय थोड़ा सा हमारे मन में ऐसा भाव हो जाता है, अरे मैं भटक गया, मैं कुछ गलती करके बैठ गया। बस और थोड़ी क्षणों के लिए भोग तो भोग लिए, लेकिन उसके बाद मन और विषयों के बीच में थोड़ी सी दरार आ जाती है, थोड़ी सी। लेकिन समय जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, थोड़ा समय बीत गया, फिर वो दरार जुड़ जाती है, फिर से उसी के अंदर संबंध आ जाता है मन और विषयों के साथ। दो अवस्थाएं हमारी, एक तो वासनाओं से प्राप्त होने वाली क्षणिक उपलब्धि, उसके बाद मन की जो अवस्था है मानसिकता उसको देखो, वहां पर आपको थोड़ा सा अनुभव मिल जाएगा। परंतु जिसको जिज्ञासा है, अपने जीवन को ऊपर उठाने की जिसको इच्छा है, तो जरूर मन में संशोधन करेगा कि क्या हो रहा है, जीवन किस तरफ जा रहा है, मैं कहां भटक रहा हूं। जब ऐसी क्षण आती है विचारों की मन में, तब जाकर के उसमें जुट जाए, थोड़े आगे निकले, गहनता की तरफ आगे बढ़े, अवश्य मार्ग मिलेगा मन और विषयों के अलगता के लिए। हमारे में हमारे स्वरूप को प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्राप्त तो है ही, प्राप्त की प्राप्ति कर लेना है। हमारे में हम नहीं होंगे ना तो ये शरीर बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। हम है ही शरीर में, लेकिन ऐसी भ्रमणा हो गई है कि शरीर ही मैं हूं, जो कुछ है अंधेरा है छाया हुआ। ज्ञान दीपे भास्वर, हम हमारे में है लेकिन ज्ञान दीप से ही हम हमको देख पाएंगे। भगवान कहते दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे, मुझे देख, विराट स्वरूप में सब में मैं हूं, तेरे में भी। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, कोई बाकी नहीं है सबका धारण करने वाला भी मैं हूं, जन्म देने वाला भी, मारने वाला भी मैं। तो ये जो प्रत्यक्षता है, ये जो अनुभव है कि मन जब तक अपने में अपना स्वरूप देखने के लिए तैयार नहीं, तब तक वो स्वयं आंख होते हुए दृष्टि नहीं है। आंख तो होती है लेकिन उसमें दृष्टि नहीं, दृष्टि है मगर दिशा नहीं है, दिशा है मगर दृढ़ता नहीं है। क्या करोगे, आगे बढ़ते जाओगे फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है। दृष्टि भी है मगर दृढ़ता भी, लेकिन एकाग्रता नहीं है उसके साथ, दृढ़ता के साथ। और दृष्टि भी है, दृढ़ता है, मगर उसमें श्रद्धा नहीं है, बिन विश्वास भगति नहीं। तो उसके बिना, विश्वास के बिना आप नहीं पहुंच पाएंगे। हम देखते हैं कोई घर गृह त्याग कर दिया है, संन्यास्त का जीवन ले लिया है, निकल गया और साधु के बीच में कभी मिल गया हो, पूर्वाश्रम के व्यक्तियों के सामने आके खड़ा हो गया, अरे होते वो है ये, तो वो तो वही था जो हमारे पास ऐसे रहता था, अरे तू तो ये है। अरे भाई जब था तब था, अभी तो संन्यास्त जीवन है मगर दृष्टि नहीं बदलती। उसी में भटकता रहता है, उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है उसके तरफ उसका मन है नहीं, दृष्टि नहीं, लगाव नहीं है। जो इस दृष्टि को देखने वाला है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि कहते आप तो पहले हमारे साथ रहते थे, अब आप संन्यास्त जीवन जी रहे, आपको तो बहुत कुछ बड़ा प्राप्त हो गया, आप तो संन्यासी हैं, हमारे से आगे बढ़े हुए, बस जो कुछ उसको कुछ नया दिखाई दे रहा है, कुछ उसमें से नई बात उसको मिल रही है कि अब सन्यासी है, ये हमारे जैसे नहीं है, हमारे से उसका जीवन कुछ ऊपर उठा हुआ है, तो त्यागी है, सन्यासी है। जब भी वो अपने पुराने जो भाव है उसमें से अलग हो करके सामने प्रत्यक्ष जो सन्यासी खड़ा है उसको नहीं देख पाएगा, तब तक वो उससे अलग नहीं हो सकता। पुरानी भावनाएं बनी रहेगी, उसके प्रति सद्भाव नहीं ला सकता। वैसे ही हमारा मन विषयों से अलग तभी होगा, उसको अंदर से भाव जगेगा, उसमें भक्ति आएगी, श्रद्धा आएगी, तब जाकर के वो मानेगा। जब भी हम हमारे जीवन में मन और विषयों को अलग करना चाहते हैं, हम उससे अलग होना चाहते हैं, तो हमें क्या आरंभ करना चाहिए, क्या हमारी गतिविधि होनी चाहिए? जब तक रसना में रस है, रस में रसना है, तब तक हमको उसमें से उसकी लालच नहीं जाएगी। और आगे हम देख चुके हैं, जब तक शरीर भाव रहेगा तब तक मन भौतिकता को ही सोचता रहेगा, और शरीर की भौतिकता में ही मैं हूं ऐसा लगाव और संस्कार दृढ़ हो चुके हैं, तब तक वो विषयों से अलग नहीं हो सकता। शरीर ही मैं हूं, शरीर से प्राप्त होने वाले सुख और आनंद वही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा साधन। जब मन से शरीर, मन द्वारा शरीर से छूट पाओगे, तभी जा करके ये विषयों से अलग हो सकते हैं। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के सुख मेरे सुख नहीं है, मैं सुख जो चाहता हूं आत्म सुख चाहता हूं जो शाश्वत है, जो हमारे लिए अनादि है, जिस आत्मस्वरूप के साथ आनंद बना ही रहता है। आत्मा सुख स्वरूप ही है, परंतु हमारे स्वस्वरूप को भूलने के बाद शरीर के साथ लगे हुए देहाध्यास भी है, विषयों में आसक्ति भी है, इसके कारण मन वहीं जाएगा, कौवे की तरह जाएगा, वो सड़न के ऊपर ही बैठेगा। शरीर भी सड़ने वाला है, तो उसका मार्ग भी वही रहेगा, वो सड़ती हुई चीजों के पास ही जीवन को सड़ाएगा, अपने लक्ष्य को भी बर्बाद कर। तो मन जितना दृढ़ होएगा, मन जितना ही इस विषय में चिंतन करेगा कि क्या है विषय, विषय में सुख है मगर कितना, जो है वो सच्चा है या क्षणभंगुर है, सोए है तब तक तो स्वप्न दिखाई रहा है, दिख रहा है, लेकिन जागने के बाद न पहले था न बाद में, वैसे ही जो भोग हम भोग रहे हैं उसमें से उपराम होने के बाद वो भोग नहीं रहता है, उसका आनंद भी नहीं, उससे पहले भी लोलुपता रहती है, भूख रहती है उस भोग की, उस विषय की, लेकिन उस समय उसके पास वो सुख और आनंद नहीं था। जो भोग भोगने की आरंभ करने से पहले भी वो सुख शांति नहीं थी, आनंद नहीं था, और भोग में से उपराम होने के बाद भी वो शांति, वो सुख, संतोष नहीं है, उसमें से उस समय जो प्राप्त होता था वो आनंद अभी नहीं है। तो भोग के बीच में फंसे हुए जो भोग के सुख है, भोग की जो अनुभूति है, वो भी स्वप्न की जैसी है, क्षणिक है, क्षणभंगुर। जैसे स्वप्न सच्चा नहीं है, मात्र भ्रमणा है, वैसे ही भोगों के साथ लगते समय वो सच्चा लगता है, लेकिन उससे अलग होने के बाद वो भोग भी भ्रमणा है जीवन के लिए, मरुमरीचिका है। इच्छा है सुख की, प्यास बुझाने की, जहां दिखता है वो पानी की तरफ दौड़ रहा है, और पानी है ही नहीं, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, जब थकता है प्रतीति होती है मैं भाग रहा हूँ मगर जूठा भाग रहा, मेरी दौड़ है पानी के लिए लेकिन सही दिशा नहीं है, भ्रम के तरफ दौड़ रहा, तृषा लगी है, प्यास है, पानी मिल जाए उसका लक्ष्य है मगर नहीं मिल रहा। जब वो भ्रामकता मरु मरुचि का उसकी नहीं आएगी, भ्रामकता नहीं समझेगा, तब तक वो प्यासा यदि प्यास 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 पे बुझाते नहीं बुझते ही वो मर भी जाते, शरीर भी छूट जाए। जब उसको ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म से वो अपने मुंह को मोड़ लेगा, सही दिशा पकड़ेगा कि पानी यहाँ नहीं है, ये तो ब्रह्म माया है, दिशा बदल दी, रास्ता बदल दिया, जिस तरफ जलाशय था उस तरफ दौड़ा, मिल गया पानी। हम भी विषय भोगों को देख करके उसमें से आनंद मिलने वाला है, उसमें से सुख मिलने वाला है, उसमें से तृप्ति होने वाली है, भागते उसके पीछे, दौड़ते रहते रात दिन, न उसमें से कभी तृप्ति होती है, न उसमें से कभी भी वहां पर होकर के स्थिर संतोष और शांति मिलती। कई बार कई कई जीवन तो ऐसे होते हैं कि जीवन भर उस तरफ भागने के बाद भागते भागते भी उसका स्वप्न टूटता ही नहीं, फंसा रहता है, दुख ही दुख, लेकिन वो दुख में वो सुख मान बैठा है, वो भोगों में उसको आनंद मिल रहा है और शरीर का भौतिक शरीर का आनंद ही वो सच्चा आनंद मान करके भटक रहा है। वहां रोग भी आएंगे, शरीर भी सड़ेगा, असक्त हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, वहां से उसको पता चला कि ये सही नहीं है। मन जब भी उससे वापस आने के लिए तैयार होगा वो कब होगा? अनुभव से, किसी के बताने पर वो कभी नहीं मानेगा। हमारी युवा पीढ़ी है आज, उसको चाहे कितना भी कहो, कितनी भी अच्छी से अच्छी सलाह दो, वो माता पिता का कभी नहीं मानेगा, वो अपने रास्ते पर गलत रास्ते पर जाएगा। और जब उसकी जवानी तृप्त हो जाएगी तो अपने आप ही उससे वापस लौट जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा तू वापस आ, अनुभव कर लिया, देख लिया कि क्या है जीवन, जवानी के भोग इतना इतना जोश हो, क्या है भोग, क्या है देख लिया, अपने आप पीछे इतना समझ लो कि हमारा अधूरा अनुभव कभी भी हमको वापस नहीं ले सकता, वापस नहीं ला सकता, अनुभव पूरा हो जाने दो। पहले भी जो बात हुई, कैसी भी व्यसन हो, कैसा भी व्यसन हो, कैसी भी वासना हो, एक बार उसमें उसको डूब जाने दो, डूब जाने, यदि खत्म हो जाए तभी कोई और जाने, किसी के कहने पर वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसको वापस लौटाना है तो उसको पहले मुक्त मुक्त हो जाने दो, करने दो उसमें, अपने आप ही अपनी गलतियों का अनुभव लेकर के, उस अनुभूति को, अनुभूति की शक्ति लेकर के वो वापस लौटेगा, चलो भाई अब यहां से वापस चले, ये अच्छा नहीं है। तब जाकर के मन और विषयों से, अपने जीवन और विषयों से अलग होने की कुछ तक कुछ क्षण उसको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन स्मशान वैराग की तरह होता है, वो भी स्मशान में जाते हैं, क्रिया करके जो है संस्कार करके वापस चले आए, फिर मन की वही अवस्था। वैसे भोगों के बारे में मन और विषयों से अलग हो कैसे पाए? समस्या बड़ी भारी, फिर भी कोई मार्ग प्रभु निकालेंगे क्योंकि सर्वसमर्थ। यहां पर सनकादिक ऋषियों का प्रश्न है, मन विषयों का विचिंतन करते 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 विषय रूप हो गया है और विषयों का दर्शन मन से ही होता है इन दिनों को अलग अलग कैसे किया जाए। सनकादिक ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, समस्या उनके सामने रखी, प्रश्न किया कि पिताजी ये हमारे सभी के जीवन की एक समस्या है, मन और विषय को अलग कैसे करें। ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, इतने बड़े चार वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा स्वयं इस प्रश्न की उलझन में वो भी उलझे, उत्तर नहीं दे पाए, कैसे दे सके कि ब्रह्मा जी स्वयं सनकादिक भी देख रहे कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, सभी जीवों को कुछ न कुछ ब्रह्म का स्वरूप अलग है और यह ब्रह्मा जी की कल्पना भागवत में अलग भी है। वहां पर बताए उत्तर नहीं दे सके, क्यों कि जीवों के अनादि संचित जो कर्म है वो उसको भोगवाने के लिए, उसको जन्म देने के लिए, उसका प्रारब्ध करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं उस प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। जो प्रवृत्ति में लगा हुआ है, जिसकी वृत्तियां कर्ममूलक संसार के ऊपर दृष्टि लगी है, जिसकी क्षेत्र ही हुई है, इसलिए तो भगवान ने पूरी गीता के अंदर कर्मयोग का ही उपदेश किया है, कर्मयोग का ही दर्शन कराया है। ब्रह्मा जी भी स्वयं कर्म कर रहे हैं, जीवों को अपने प्रारब्ध का के साथ जुड़ा रहे हैं, कर्मों के साथ फल दे रहे हैं। अब स्वयं ही इस प्रकार जुटे हुए तो मन को विषयों से अलग कैसे कर सकते हैं, उसका दर्शन हम कल आगे देखेंगे। हरि ओम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरं सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास अपना एक प्रश्न लेकर के गए हैं। कि मन और विषय उसको अलग कैसे करें, उस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी नहीं दे सके, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं प्रवृत्तिशील है, कर्मयोगी है। जहां पर कर्म प्रधान है, कर्मों में बंधे हुए हैं, तब तक उसमें भेद दृष्टि बनी रहेगी। ब्रह्मा जी जीव को कर्मानुसार क्या कैसे कहां देना, उस बारे में उनकी भेद दृष्टि होती है और इसके साथ जब तक किसी भी व्यक्ति, चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो, व्यक्ति मात्र को वो नाम रूपात्मक जो जगत है और कर्म का जो दर्शन कर रहा है, कर्म के साथ जो संलग्न है रहता है, तब तक न अशुद्ध न वह शुद्ध तत्व ज्ञान न विवेक प्राप्त कर सकता है, न उसमें ज्ञान का उदय हो पाता है। तो यह तत्व ज्ञान की तो बात ही कहां। तो जब ऐसी अवस्था हो गई ब्रह्मा जी की, तो भगवान स्वयं सर्वनिर्णय के लिए निरक्षर विवेक की शक्ति और बल लेकर के हंस का रूप धारण करके प्रकट हुए ब्रह्मा जी और सनकादिक, वो हंस के रूप में भगवान के समीप में गए। पूछा, आप कौन है? हंसादिक हंस को पूछा, सनकादिक ऋषि और ब्रह्मा जी कि आप कौन है? हंस ने कहा कि आपका प्रश्न आत्मा से संबंधित है या शरीर से, बताओ पहले आप किसको पूछ रहे हैं और किस लक्ष्य को लेकर के आप प्रश्न कर रहे हैं कि आप कौन हैं? आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न शरीर को लक्ष्य में कर रहे हैं या आत्मा, उस प्रकार का उत्तर मैं दूं। आपने जिस वृत्ति में रह करके प्रश्न पूछा है उसी वृत्ति के अनुसार ही मैं जब आपको उत्तर दूंगा तब सही आपको मिलेगा उस प्रश्न का जवाब। बताओ सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी, आप शरीर से अध्यास वाले हैं तो मैं उस प्रकार का उत्तर दे दूं, या फिर आप आत्मा में रमे हुए हैं तो मैं आत्मा के संबंध से ही आपको उत्तर दूं। और आप जो बात कर रहे हैं, जो प्रश्न का है आपका आत्मा के बारे में पूछते हैं, तो मैं कहूंगा आत्मा सब शरीर में है, सब में है, सब में एक ही है आत्मा, दूसरा है ही नहीं। और जो शरीर है वो पांच भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का सम्मिश्रण उससे बना हुआ है। तो तुम लोग आत्मदृष्टि से पूछ रहे हैं या शरीर दृष्टि से, बताओ। जो तुम शरीर दृष्टि से पूछ रहे हैं तो नाम रूपात्मक है, और जो आत्मा की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो वही मैं हूं जो आप हूं। आप में और मुझ में कोई भेद ही नहीं। देखो भगवान स्वयं हंस स्वरूप धारण करके सनकादिक ऋषियों के पास ये बात अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। आत्मा के की दृष्टि से यदि देखा जाए, चिंतन किया जाए, तो आप में और मेरे में कोई भी भेद है ही नहीं। क्योंकि तो कहाँ गए हम, जब भी हमारी दृष्टि शरीर से स्थूल भाव से हट करके आत्मा परक होगी, हमारी दृष्टि आत्मा का लक्ष्य बनाएगी, तब जा करके हमें भगवत भाव प्राप्त होगा। यहाँ पर एकादश स्कंद में राजा निमि जो विदेह है और इस शरीर से जीवन मुक्त है, प्रश्न उसने किया है भागवतोत्तम, कैसे हुआ हमारी मति होगी, हमारी बुद्धि हमारे चित्त वृत्तियां भागवत कैसे हो सकती है, वो प्रश्न है। भागवत माने भगवान मैं, तो यहाँ पर भी अपनी वृत्ति जिसने आत्मा के साथ जोड़ ली और अपने आत्मा के स्वरूप के साथ जो बैठ गया, अनुसंधान कर लिया, उसका परिचय कर दर्शन कर लिया, वो तो स्वयं भागवत हो गया। जैसे भाग